ஆரம்பம் மதுரை
Thank you.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम गौरस्तुते गुरु गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सुप्रस्ताय सवैवास्मि नजिवामि त्वया विना चितोज्ञाय राधे तन्मे माम शरणं भक्त्या विना परा सीतास्तकामादितरङ्गमध्ये सीतामयीं त्वां शरणं वन्दे नमस्ते चरणं यं प्रव्रजन् द्वैपायनो व्यहतया भाव पुत्रेति सन्नयतया सर्वो आज करीब 3 महीने हो गए प्रवचन छोड़े, करीब करीब 3 महीना ही भगवान की इच्छा से कुछ दिन जिंदा बन रहा, बंबई की मुझे जाना पड़ा। सर्वत्र ही वृंदावन की याद आ गई, एक एक से स्थल जगत में है, शास्त्रों में भी आचार किंतु वृंदावन जैसा काम इस ब्रह्मांड में नहीं। जो इसकी महिमा उपलब्धि करेगा वही इसको समझेगा। अब विशेष करके वृंदावन की जिस पर कृपा होगी वही वृंदावन को वैसे प्रबोधानंद सरस्वती जी का वृंदावम पावनम त्वमेव वृंदावम मम जीवनम त्वमेव वृंदावन मम भूषणम त्वमेव वृंदावन हम सब जपस प्रभु हमारे सर्वस्व वृंदावन। वृंदावन से पंचकोशी वृंदावन को ही मत समझिए, ब्रजमंडल विशेष करके नंदगांव बरसाना राधा श्याम कुंड गोवर्धन की राज ये सब ये वृंदावन सब उसके अंतर्गत आ गया। प्रभु की जैसी यहाँ पर लीलाएं और जैसे परिकर यहाँ पर हैं और इन चीजों को समझने के लिए गीता के जो उपदेश हैं वो इसके पीठ है। पृथक करो प्लेटफॉर्म और उसके बाद में श्रीमद् भागवत का महल और उस महल में 12 स्टोरियां हैं जिसमें 9 स्टोरी नीचे है, 2 स्टोरी ऊपर है और बीच में वो स्टोरी है 10वीं। और इसके अंदर में विभिन्न विभिन्न 90 कुठरियां हैं, कुंज हैं और उनमें से जो बिचली है उसके 5 कोण जैसे हैं, पंचकोण वो इसके 5 प्राण हैं और उसमें उनके आधार दोनों जुगल किशोर जी प्रतिष्ठित और किस रूप में प्रतिष्ठित हैं, प्रेमिका की प्रेमी सेवा कर रही है, प्रेमी ही सेवा कर रहा है प्रेमिका की, कृष्ण यहां सेवा कर रहे हैं, बीच में तो जब तक गीता का मंच नहीं रहेगा, प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, हम लोग उसको जड़ीय मान लेंगे और सब गड़बड़ हो। मैं बम्बई में था, बहुत तरह के बच्चे सब लोग प्रश्न करते, तो एक प्रश्न किया वो मैं थोड़ा सा यहां पर बतला देना, गीता के संबंध में प्रश्न। महाराज जी, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी मां नमस्कुरु मामेव इष्टस्य अति जानन्ति अस्मि। इसका थोड़ा सा अर्थ हमको समझाया तो मैंने जो उसका उत्तर दिया संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आध घंटा अधिक से अधिक 5-10 मिनट और ग्रेस दे देंगे उसमें, ये लोग उतना ही बोलूंगा कि धीरे 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 बढ़ाऊंगा। तो आज इसी श्लोक की साधारण रूप में व्याख्या बदला रहा हूं। ये श्रीमद भागवत में, ये गीता में, गीता में ये सबसे श्रेष्ठ श्लोक, ये मत समझना सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़कर, लौकिक और पारलौकिक समस्त धर्मों को छोड़कर, विशेष करके शारीरिक और मानसिक जो वर्णाश्रम धर्म इत्यादि हैं, देवता देवियों की उपासनाएं हैं, यहां तक कि नारायण और द्वारकाधीश इत्यादि की जो उपासनाएं हैं, सबको छोड़कर माम एकम शरण, हमारे एकमात्र शरण में आए। यद्यपि ये अंतिम श्लोक है और कृष्ण कहते हैं कि यदि उन धर्मों को छोड़ने से कुछ पाप लगेगा तो इसके लिए मैं उत्साही, सब पापों को मैं क्षमा करता हूं। माता पिता के रुलाने से, भाई बंधुओं को रुलाने से, स्त्री को पति को और पति को स्त्री को रुलाने से, जो कुछ भी अधर्म होगा और सामाजिक क्रियाओं को न करने से जो कुछ भी अधर्म होगा, वर्णाश्रम धर्म के नहीं पालन करने से जो अधर्म होगा, पाप लगेगा, मैं एकदम प्रतिज्ञा करके कहता हूं मैं सबसे तुमको बरी कर दूंगा। किंतु उससे ये श्लोक अधिक श्रेष्ठ, उसमें शरणागति करने के लिए उपदेश दिया जा रहा है और इसमें शरणागति का फल और उससे भी बहुत ऊपर की बात इस श्लोक में कही गई। श्रीमद् भागवत गीता में विशेष करके हम जब अच्छी तरह से पढ़ते हैं और आचार्यों की टीकाओं को देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक जेनरल उपदेश, साधारण उपदेश सबके लिए, साधारण इसके बाद में भूय, इसके बाद में भूयतर, इसके बाद में सर्वभूयतम और उसके बाद में सर्वभूयतम, कितना है जनरल साधारण भूय भूयतर भूयतम और सर्वभूय, ये पांच प्रकार के उपदेश। किंतु ये उपदेश विस्तृत रूप में नहीं है, ये उपदेश है सूत्र रूप, सूत्र रूप में, और ये जो सूत्र हैं सर्व उपनिषदों गावो लोकथा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता महत्व, समस्त शास्त्र वेद पुराण उपनिषद जितने हैं ये सब गाय अर्जुन वत्स जिसको देख करके गौ माता अपना दूध स्तन में अपने आप छोड़ देती है, वो पिघल जाती है और तब उस दूध को थोड़ा सा स्तन से ही अर्जुन को पिला देते हैं और बाकी दूध वो ले लेते हैं। बाकी दूध किसको देते हैं? शुद्धि सुधि, जिसके थी मैंने बुद्धि, जिसकी बुद्धि ठीक और ठीक है, निर्मल है। किसकी बुद्धि निर्मल है? बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े सब लोग जगत के हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान है। भागवत में उनको बुद्धिमान नहीं कहा। सुमेधा, सुमेधा कौन है? जो कि भगवत भजन करते हैं, जो रसिक, जिन्होंने अपनी बुद्धि से एकमात्र भगवान का भजन ही जीवन का सार निर्णय किया है, वो तो बुद्धिमान है और बाकी सब मूर्ख। मूर्खों में कैसे मूर्ख हैं? गो खौर, जानवरों में गधे। कल हम लोग आ रहे थे दिल्ली से, देखा एक गधे के ऊपर में कुत्ता बैठा हुआ है और वो देख रहा है इधर उधर, और गधा आराम के साथ चला जा रहा है और वो ऐसा ऐसा बंद करता हुआ है वो कुत्ता। देखो ये दूसरे बात, इसीलिए ये गधे बड़े दुख हो, कुत्ते जैसे को भी अपने पीठ पर बंद करके ले जाते। गंदी गंदी चीजें मनुष्य छोड़ देता है, भोगी उस पर लाद करके, और अगले हाथ से काम नहीं करता, वो पीछे के पैर से ही काम करता है, आगे के हाथ से मुख से वो नहीं पूछता, पीछे से काम करता है। आगे चलाओ तो पीछे चलेगा, पीछे चलाओ तो आगे चलेगा, ऐसे मूर्ख होता है। ऐसे ही हम लोग जो भजन नहीं करते हैं भगवान का, ऐसे गधे गोखर हैं और बुद्धिमान हैं भगवान का। तो सुधि, जिनकी बुद्धि ठीक है निर्मल है, उनके लिए कृष्ण मटके में दूध रखकर, बछड़े को तो थोड़ा पिला दिया और वो मटके में दूध रख दिया और उन सुधी लोगों के लिए वो सबको पिला दिया जो उनके प्रेम हैं, जो भगवान का है और नहीं। यहां तप्त गीता की बात, दूध दूध दिया गया उसे, किंतु कुछ काम बच गया। दूध को दूर करके उस पर आग पर जमाओ, उसको सुंदर दही बनाओ, उसके ऊपर में मोटा एक सर लग जाएगा, मलाई दो और मलाई को मंथन करो, तो उसमें मैंने मलाई मैंने सब दूध को दही को मंथन करो, उसमें सुंदर कोमल मक्खन निकलेगा। अभी मक्खन में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो फेंकी जा सकती, आग पर उसको चढ़ा दो, मल रहेगा सो निकल जाएगा और अंत में क्या बच रहेगा? घी बच रहेगा, घी से दूसरा चीज अब कुछ नहीं बनेगा, घी ही उसका सार है। गायों से दूध करके जो दूध निकला उसको व्यास जी ने आग पर बैठाया, सुखदेव को कहा जो बेटा तू मंथन कर दे, सुखदेव जी मछली लेकर धीरे धीरे मंथन किया, मक्खन निकला। कुछ लोगों को मक्खन उन्होंने दे दिए, नौ स्कंद तक मक्खन दिया लोगों को, किसी ने कहा जो मक्खन हम तो मक्खन का भी जो सार है वही दे, तो वो दिया भागवत। इसलिए भागवत और भी श्रेष्ठ और महान, भागवत ने जो दिया वो कहीं उपनिषदों में वेदों में नहीं है, किंतु सर्वत्र है। इस रूप में जैसे दूध में सर्वत्र ही अणु अणु में है, ऐसे गीता के उपनिषदों में, वेदों में, रामायण पुराण महाभारत सब में है वो चीज, किंतु उसको भाई निकाल करके मत करके मक्खन बनाना ये साधारण काम नहीं। उसको मक्खन बना करके घी निकाला गया। ये श्रीमद् भागवत के राजपंच अध्याय गोपी गीत समर गीत उद्भव संदेश इत्यादि सुनकर ये और जगत ने ये किसको दिया? अनाधिकारियों को नहीं दिया, एकमात्र अधिकारियों को। साधारण रूप में जो जनरल पर्सन हैं, साधारण व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा कि तुम लोग अधिक मत सो, अधिक मत जगो, अधिक मत खाओ, युक्त आहार विहारस्थ इत्यादि जो श्लोक है कुछ नहीं, तो ये दुखपूर्ण जो योग है, दुर्लभ जो योग है, ये नहीं होगा। युक्त आहार विहारस्थ युक्त कर्म चेष्ट तुम युक्ता व बोधस्थ जो वो बहुत ही सुखा है। ये योग जो भगवान से और जीवों को मिलाने वाला योग है बड़ा दुर्लभ, किंतु युक्त आहार विहार तो करो। इसलिए साधारण जनरल को ज्ञान दिया ये शरीर हम नहीं, शरीर में आसक्त हो करके शरीर के लिए मत रो। जात से ही ध्रुव जन्म हो जन्म में तस्य। अर्जुन तुम सबके लिए रोता है, सब लोग अपने परिवार बंधु भाई बंधु स्त्री पुत्र के लिए रोते हैं, तुम भी रो रहे हो, कभी इनके मारने से संभल जाए। अरे गतासु न गतासु नाम शोचन के पंडित, पंडित व्यक्ति जो होते हैं जो चले गए संसार से, जो चले जाएंगे आज नहीं तो कल परसों में चले जाएंगे, इनके लिए वो नहीं। इसलिए अर्जुन तुम अपने को पंडित समझता है तो मूर्ख है तुम, उसके लिए मत चिंता। ये शरीर के अंदर में आत्मा है, नैनन सिदंत शास्त्रांगन दत्त पाप करना चाहेंगे, ये आत्मा अजर अमर है, शरीर मरा हुआ है, इसके लिए मत चिंता करो। हाँ एक आदमी चिंता कर सकता है कुछ, जिसको ज्ञान हो गया आज मैं भजन करने के लिए आया और शरीर भगवान ने दिया है मंदिर के रूप में, तो उसकी झाड़ू पोछी और कुछ रिपेयर इत्यादि करा सकता, किंतु अपना मान करके नहीं, भगवान का दिया हुआ समझ कर उसकी रक्षा के लिए करो, और नहीं फिर भगवान का भी भजन नहीं होगा। इसलिए यहां तक तो ठीक, किंतु आसक्ति जब वो प्रभु मांगे उनको लौट, किंतु पूछेंगे जैसे इसको तुम लोग को ये दुर्लभ ये चीज दिया तो तुमने किया क्या? इसलिए कहते हैं जस्यां जागृति संयमी, जिसमें संयमी जगते हैं, जान सर्वभूतानां इत्यादि श्लोक में जो बताया उसमें संयमी जगते हैं, और जिसमें संयमी जगते हैं मुनि लोग जगते हैं उसमें साधारण लोग सोते हैं। इसलिए तुमको भगवान का भजन करना चाहिए, अपनी कर्तव्य पालन करना चाहिए। यहां तक जनरल सुख दुख को बराबर समझ करके अपना कर्तव्य कर्म करो, ये जनरल बातें सब। दूसरा आता है इसके बाद में प्रमुख ज्ञान, यह है बुद्ध। आत्मा ही ब्रह्म है और स्थित प्रगस्य का भाषा समाभस्ते सब किम आशी किम प्रजेकर इत्यादि, ये ब्राह्मी स्थिति है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति। और इसका कंक्लूजन किया है 18वें अध्याय में, क्या ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांक्षति समस्त सर्वे चुते सुमत्व लभते,
ब्रह्मभूत व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, ब्रह्म ज्ञान की वस्तु। ऐसा सोच करके ब्रह्म चिंतन करेंगे और कहीं भी सुखी और दुखी न होंगे। जिसको उपाय सुख और दुख जो कुछ मिल जाता है उसको सहन करें और चित्त को ब्रह्म में लगाए। इसका द्वितीय अर्थ है कि ये सब व्यक्ति ये है गुह्य दुख। कोई भी सुख पाओ, कोई भी दुख पाओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल की कामना मत करो, ऐसे करते हुए चलो। ये हुआ साधारण रूप में। इसके बाद आता है परमात्मा ज्ञान, खर पुरुष अखर पुरुष, और इसके बाद में पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम है कौन? अंगुष्ठ परिमाण में हृदय में है, उसी का चिंतन करते हैं। पुनः पुनः उसमें नहीं मन लगता है कि करो, नहीं लगता है कि करो। क्लेशो अधिक तरह तेषाम अव्यक्त आसक्ति तसाम। अव्यक्त जो पहले ब्रह्म वाला जो कहा ना, उसमें मत जाओ, खबरदार, उसमें क्लेश ही क्लेश। इसलिए इनका आकार ही इनमें चित्त को लगाओ जोड़ो। जो इनमें चित्त लगाता है वही सन्यासी है, वही योगी है। सन्यासी स योगी च, और नहीं तो वो सन्यासी और केवल आग तापने से और अहम ब्रह्मास्मि कहने से। इसलिए ये गुह्यतम और गुह्यतम है। नवा अर्थ है जिसमें एक तरफ से सब चीजों को बताया, प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, उसके साथ में उसका संबंध क्या है। ये है भगवत सेवा। नौ एक के अंत में भी ऐसा ही कोई श्लोक कहा है, वो दस अठारहवें के अंत में ये बताया गया सर्वकुर्यतम भूयासुर में परमं वचः इष्टो असि प्रतिजानो प्रतिजानो प्रियो असि। तुम हमारा अत्यंत प्रिय है इसलिए तुमको ये उपदेश देना पड़ा है। ये उपदेश क्या है? इसके पहले में नारायण की उपासना तक आ जाएगी और सब उपासनाएं आ गई, भगवत उपासना सब, किंतु ऐश्वर्य भाव से। और इस श्लोक में पांचों का डिस्क्रिप्शन, पांचों का तात्पर्य इस एक श्लोक में, और ऐसा है जो और किसी में नहीं। अंतिम तो कहते हैं मन मना भव मद भक्त, नंबर दो हुआ मद भक्त, मद यादि मां नमस्कार। अब बीच में एक रह जाता है उसको, उसमें तो इसमें पांच स्थितियों का वर्णन किया। यदि वो तुमसे न हो तो ये करो, वो भी तुमसे नहीं होता है तो ये करो, वो भी नहीं होता है तो ये करो, वो भी नहीं होता है। अरे कुछ मत करो, हमको नमस्कार पर तो बस इससे। इसलिए अब हम पहले श्लोक, इस श्लोक के पहले की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पहले में उन्होंने बतलाया मन मना भव, अपने मन को हमारे अंदर में लगा दो। ये सहज बात नहीं। यदि एक आदमी किसी एक काम में मन लगा दे तो उसकी आंखें, उसका कान, नाक इत्यादि जो सेंस हैं, मन नहीं रहने से आदमी उसको पागल कहेगा। सब इंद्रियां रहते हैं, मन जैसा है नहीं। मन कृष्ण में जब लग गया, विष्णु में लग गया तब तो वो गया, उसी को बद्धावस्था था। और किसी का मन यदि भगवान के चरणों में लग गए ये सर्वोत्तम उपासना। ये उपासना कभी कम मन लगेगा, श्रद्धा में नहीं लगेगा, श्रद्धा होने तक नहीं लगेगा।
रुचि हो जाएगी तभी नहीं लगेगा। अभी देना आरंभ करेंगे, आसक्ति जब हो जाएगी तो थोड़ा बहुत आधा मन दिया, आसक्ति के बाद में भाव जब होगा तब थ्री फोर्थ दे सकते हैं या वन हाफ दे सकते हैं, और प्रेम होगा तो मन पूरा दिया जाए। इसलिए जब कृष्ण उद्धव जी को वृंदावन में भेज रहे थे गोपियों के पास में, उद्धव चलाकी चतुराई से बोले, सीधे नहीं है बड़े टेढ़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा मेरी माता, मेरी मैया और मेरे बाबा पिताजी मेरे लिए बड़े दुश्मन, आप उनको जाकर के मेरे संदेश को देकर के और उनको जरा सांत्वना प्रदान। तो उद्धव जी कुछ ठहरे गए, बोले कि और भी कुछ। तो कृष्ण ने सोचा कि कुछ कहूं कि ना कहूं, चिंता करने लगे। फिर सोच करके कहे जो अब ना कहेंगे तो कब कहेंगे। अच्छा एक बात उद्धव करना, वहां पर मेरी सबसे अधिक प्रिया है मत्सिका, मत्सिका जिन्होंने अपने चित्त को हमको दे डाला और मेरे अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं जानती है, देह दैहिक सब कुछ भूल चुकी है, देह मैंने ऐसे भूलने से नहीं होगा। यदि कोई खाना पीना और सारी क्रियाओं को यदि भूल जाए तो ये देह को भूलना, ऐसे मैं अपने शरीर को भूल गया था नहीं? जब आप खाना ही नहीं खाएंगे भूल जाएंगे, प्यास नहीं रह जाएगी, शरीर का मंडन श्रृंगार इत्यादि नहीं होगा, मुख धूना भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, तट्टी फट्टी सब भूल जाएंगे, कुछ भी शरीर का नहीं भूल जाएगा। शरीर कैसा है, पतला हो गया है, दुबला हो गया है, स्नान नहीं किया, बाल नहीं काट, ये सब खाना पीना सब कुछ सब कुछ। ऐसी गोपियां हमारे लिए देह और दैहिक मैंने हमारे शरीर से क्यों संबंध, पति पुत्र परिवार भाई बंधु इष्ट दोस्ती धन संपत्ति और चीजें दैहिक माने श्रृंगार, श्रृंगार की दैहिक देह नहीं है, देह करते श्रृंगार करना, मंडन करना, सब वस्त्र पहनना, उसे साफ करना, ये सब कहीं भी उनका कोई स्नेह नहीं है हमारे, और दिन रात स्मरण तो माम मेरा ही स्मरण करते हैं। उद्धव हमने ऐसा कहीं भी जगत में नहीं देखा जो अपने मन को ऐसे देखा। अब उनके और लोगों के तो इस प्रकार से प्राण धारण करते हैं, उनके प्राण यहां तक आ गए हैं, विफल कंठ ये कंठ तक उनके प्राण आ गए हैं। तुम जाओगे तो देखोगे जी वो कैसा है, जीवित नहीं थी, इसलिए जल्दी से जाओ और जा सके उनको प्राण को धारण कराओ। इसलिए गोपियां मन मनमना भव का उदाहरण देती, ऐसी गोपियां हैं कितना ठीक। आज आधा ये प्रश्न कर दें, कल फिर दूसरा रखें, आज मुझे बदला मन मना पाओ तो करें कि उद्धव तुम्हारे जाने तक शायद बचे ना बचे और लोग तो बचे रह सकते हैं, किंतु थोड़ा सा जल्दी से जल्दी सी जाओ, जाकर के उनको हमारा संदेश देना। क्यों संदेश देना, मैं कहां करके आया, मैं कल न तो परसों जरूर, बस इसीलिए प्राण धारण कर रही है, यही हृदय न रख सकते। कृष्ण आते ही झूठे नहीं, झूठ नहीं बोलते, इसलिए इसी बात को पकड़ करके प्राण इसी डाली में अटके हुए हैं। यदि एक भी डाली टूटी जाएगी फिर जल्दी से नहीं जाएगा तो फोर वो नीचे गिर जाए, अर्थात वो शरीर को भी छोड़ इसलिए जल्दी से तुम जाओ।
अब उसी के लिए उदाहरण समझो
कि कैसे ये कृष्ण मन लेते हैं। हम समझते हैं कि मन दिया नहीं जाता,
देना बड़ा कठिन।
यदि वो किसी का मन ले लेना तब तो बहुत साज हो जाएगा, नहीं तो मन दिया नहीं जाएगा। वो गीता में कहते हैं, गीता में उपनिषद में कहते हैं, नाय आत्मा प्रवचन भून विद्या बहुनाशन जमे वे सीते तीन लब्ध तस्त्मा भी ढूंढते
स्वाम माने कृष्ण स्वयं, स्वाम स्वयं कृष्ण जिसको वर्ण कर ले अपने प्रिय पात्र के रूप में वर्ण करते हैं। जैसे ये तुम आ जाना, तुम्हारा मन मैं लूंगा, तो ऐसा यदि होगा तब तो हो। इसलिए कृष्ण किसी का मन यदि ले लें स्वयं वर्ण करके तब तो हो। ऐसा हम चाहेंगे
बहुत कठिन,
किंतु मन ऐसा बनाना पड़ेगा जो कृष्ण को देख करके लोभ हो जाए। यदि वो मैला रहेगा तो नहीं लेंगे। सब प्रकार से मन निर्मल हो, केवल निर्मल होने से भी नहीं होगा, ज्ञानियों का भी मन निर्मल होता है, उसमें कुछ केवड़ा का बाष्प लगाना पड़ेगा, कुछ केवड़ा का रस उसमें लेकर के देना पड़ेगा, जैसे कि सुगंधित हो उठे, कृष्ण के नाकों में जाकर के उनको आकर्षण कर सके, ऐसा होना चाहिए। केवल निर्मल होने से नहीं, भक्ति रस प्रूफ होना चाहिए। तो कैसे कृष्ण लेते हैं? कृष्ण गोचारण करने के लिए देख रहे हैं, ये पहले भी मैंने बताया है उदाहरण के लिए, कृष्ण गोचारण करने के लिए निकले हैं। बड़े सुंदर सांवले सलोने हैं, घुघराले अलके कपोलों तक आ गए हैं, और गायों को लेकर के चराने के लिए चले जा रहे हैं। सखाल उनको चारों तरफ से घेर करके साधु साधु कृष्ण के लिए कह रहे हैं, बड़ी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए, गीत करते हुए, वेणु बजाते हुए, सिंगा बजाते हुए चले जा रहे हैं। जब जा रहे थे ब्रज के अंधे भी उनको देखने के लिए निकल गए। ब्रज में कोई अंधा का कुछ नहीं निकलता है, मथुरा में निकलता है जो कुछ संदेह। ब्रज में वृंदावन में वहां पर शक्ति आती है, मथुरा का अंधा भी एक अंधे का हाथ पकड़ कर कहां जा, चलो कृष्ण को दर्शन कराए, उनको भी ललक होती है दर्शन करने। ब्रज के सब लोग निकल करके रास्ते पर आ गए कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं। खुदा मेरी आनंद बाबा भी पीछे पीछे कृष्ण को लिए चल रहे हैं और कहते हैं, बेटा जल्दी से आ जाना, जल्दी से आ जाना, अभी दूर मत जाना, इस तरह से उनको कह रहे हैं। और कृष्ण बार बार कहते हैं, उनको लौटा रहे हैं, बाबा को लौटाया, पद दे दिए बाबा और मत जाओ, मैया और मत पढ़ो, धीरे धीरे सबको लौटा रहे। सब जितनी नवेलियां हैं अट्टिका
अट्टालिकाओं पर गवाक्षर रंध्र से जंगले के ओट से उन्हें देख रही है, कोई पुष्प कर रही है, कोई और आगे बढ़कर के सुंदर के द्वार पर देख रही है। कृष्ण भी खोज रहे हैं, नित नई नई चाहिए, खोज रहे हैं। घर में एक नवेली अभी दो तीन दिन का ब्याह हुआ, मैरिज हुआ, एक नई बहू आई, बहुत पहले से सुना था कृष्ण गोचारण में जाते हैं, अद्भुत सुंदर। जब सुनी जी ये गाय को लेकर के जा रहे हैं तो उसके मन में एकदम कैसे कब थे, बड़ी उत्कंठित अधीर हो गई, अभी सास वहीं पर पहरा दे रही है बैठी हुई, और ननद भी बड़ी खुशी है, वो दोनों समझा रही है तू मत जाना, समझा रही है तू मत जाना। वहां एक काला सर्प बैठा है, यदि काट दिया तो उसका विष कभी नहीं उतरेगा, इसलिए तुम घर में रहो, हम अभी तुरंत आ रहे हैं। तो वो कुछ निर्लज्जित हो गई, आप कहां जा रही हैं और मैं घर में बैठूं, मैं भी चलूंगी, ना ना खबरदार मत जाना, अभी तुम्हारा कच्चा है हृदय और वो विष नहीं उतरेगा, तुम जिस पर बैठो। कहीं मैं तो चलूंगी, अरे नहीं नहीं मत जाना, खबरदार मत जाना। तो मैं अकेले थोड़ी जा रहे हैं, अरे हमारी ननद जो हमसे छोटी उम्र की है वो जा रही है, और वृंदावन की जितनी भी नवेलियां हैं, वृद्ध हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, वृद्ध हैं, पशु पक्षी की पतंग तक सभी उनको दर्शन करने के लिए जा रहे, बस ब्रज में मैं ही अकेली आती हूँ जो मैं इनका दर्शन नहीं करूंगी, हम तो जरूर चले, नहीं नहीं जाएगा। अच्छा तो कुछ बोलने का जैसे तो ये देखेंगे कितना बोलती है, व्यर्थी व्यर्थी में नहीं जानती, ये गुजरिया बूढ़ी गुजरिया ये कितना बोलती है हम देखें, भैया हम तो जाएंगे जरूर, चाहे जो कुछ खर्च निकाल दो हम जाए। तो वो देखिए जैसे एकदम दरवाजे पर कुछ आ गए, कहीं बाहर में निकल जाए आगे, इसलिए जल्दी से दोनों भगी सास भगी और ननद भगी। तो जब आगे जब बढ़ गए तो ये पीछे उठ करके और चल गए, और दरवाजे के ओर से कपाट के ओर से वो देखेंगे, जो बाहर के आदमी हमें न देखें कि जो हम उनको देखें। फुलिंदी वर्कांत में हिंदू बदन बरहा वसन समय श्री वसंत उदार होश उदरम सीताम बरम सुंदर गोपीनाम गोपसंघातम गोविंदम। उसी टाइप पर मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, अथरों पर मुरली रखी और मानो अपने शरीर का हृदय का जितना मृत है उस बंसी के छेद में दे रहे हैं, और जोर से उसे निकाल कर समस्त वृंदावन को आप्लादित कर रहे, उनके इस रूप को जो नहीं देखा उनका नैनों में आग लग गई, वो नेत्र सफल वही नेत्र सफल क्योंकि कृष्ण के इस रूप को दिखा रहा। तो गोपियां आरती उतार रही, आरती जला करते नहीं बल्कि अपने नैनों से, कैसे नैनों से, नैन एक प्रदीप हृदय में उसका तेल है, तेल कहां से रहेगा, और उस हृदय की धीमे पत्ती शनि भी आंखों के जरिए जो प्रतीक जल रहा है भावों से निकलते हुए कटाक्ष, और उसी कटाक्ष से कृष्ण का अर्पण करते हैं। कृष्ण उसको बड़े आनंद के साथ में लज्जित होकर के और उसको अंगीकार करते हुए ये कुछ दरवाजे की ओर से ये देख रही थी, कृष्ण किसी को देखे चाहे न देखे, जो उनको देखना चाहता है उसको वो देख लेते हैं, आज उसको सबसे पहले देख, बस सपनों को छोड़ करके वहीं पर एक बछड़े को भिटका दिया, उसकी पूछ पकड़ने से वो भिदक जाता है, भिदकना समझते हैं, भिदकना समझती है, उछल करके भिग गया, तब उसको पकड़ने के बहाने वो उसको ऐसे भगाया कि उसके ठीक दरवाजे की तरफ में चले, और वो बछड़ा सिखाया हुआ मान बस खुदकता हुआ उसको एकदम दरवाजे तक पहुंचा, कृष्ण भी पहुंचे और झट अपनी बंसी से लेकर के उसको ऐसा किया, मुस्कुरा करके देखा और उसके चित्र को अंतर से निकाल करके बस ले करके चल दिया आगे बढ़ा, बस वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ये मन लेना है, मन मना भव ले, यदि कृष्ण कृपा करके ले लें सब तो ले लेंगे, और हम अपने मन से चाहें तो कहां से ये सुंदर रूप मिलेगा। इसी तरह से कृष्ण जिस भक्त पर इतना आनंदित और प्रसन्न होते हैं उस पर उतलेंगे। सबका मन नहीं है थोड़े, कभी कितने जुगो जुगो जुगांतरों से कल्पों से वो तपस्या कर रही थी, आज उसका जो परिश्रम सफल हुआ है, ऐसे एक ही दिन में नहीं हो गया। तो ले लिया मन, अब खड़ी थी खड़ी रह गई, 15 मिनट 20 मिनट हो गया, कृष्ण चले गए, धूल उड़ती हुई समाप्त हो गई, गायन और कृष्ण एकदम बन में प्रवेश हो गए। अब ये खड़ी खड़ी, मन तो है नहीं कि वो शरीर है, खड़ा रह गया। नंद कहा था ना तुमको, वो 10 देगा काला भोजन, 20 चल जाएगा, वो 20 कभी नहीं उतरेगा। अब तो घर हम देखें 20 उतारे कि नहीं, कैसे उतरे, जबरदस्ती पकड़ करके झकझोरा और ले आई घर में किसी तरह से, जाओ घर से ले आओ, दही रखा है इसे ले आकर के, और मथने से कुछ परिश्रम होने से कुछ 12 की तरफ में मन आ जाएगा, इसलिए उसको दही राई घर में रखी थी, एक हड्डिया बस राई की हड्डिया उठा लाए और उसे मथनी देकर के घर रखा। ऐसे कभी हाथ बंद हो रहा है, कभी चल रहा है, मन कहाँ है? मन तो मुझे मन मना रहा कृष्ण के लेकर, मन तो है नहीं, बस ऐसे बेमन की मत रहे, क्योंकि वो ऑर्डर दे रहे। फिर आई ननद ने देखा, अरे ये क्या कर रही है कल मुझे, बस मैया से नालिश कर दिया, ये क्या कर रही है, पर घर तो उसके साथ है, उठो उठो खड़ी हो जाए, पानी लाओ, रस्सी हाथ में दे दिया, एक घड़ा बड़ा सा दिया उसके ऊपर में एक और छोटा सा घड़ा, उसके ऊपर और एक घड़ा दिया, और एक घड़ा यहाँ दे दिया, और एक छोटे से बच्चे को उठा करके इसको भी संभालना, रोए धोए नहीं, और बड़ी लंबी सी रस्सी उसके हाथों में चल पड़ी, हाथ से पकड़ा नहीं खड़े हो, ऐसा प्रैक्टिस हो जानते हैं, ऐसे चौकी हैं तो एक भी घड़ा का पानी भी नहीं पड़ेगा, घड़ा भी नहीं गिरेगा, ये लोग तो आप पैक नहीं ले सकते। यदि गांव से बाहर निकलना होता, दूध से लाना होता, सब तो होता, यहाँ तो घर में दबा दिया रसोई घर में पानी आ गया, बट लो ही नहीं पानी भर गया ने? तो चल पड़ी, चलते चलते प्रैक्टिस था पहले का चलने का, स्वप्न में कोई स्वप्न देख रहा है, स्वप्न देखते देखते को उठा दिया, तो वो उस डिस्टेंशन तक आदमी चला जाता है जहां तक जोड़ने जाने का अभ्यास है, तो वहां तक ऐसे ही चले गए, घड़े को रखा, बच्चे को रख दिया, रख करके रस्सी लिया, पानी भरना है, बस उसका फांग बनाया और लगा करके घड़े में देना था और बच्चे के गले में लगाया। हाँ हाँ ये क्या कर रही, क्या कर रही है सब, जिसका था जो गोपियां थी वहां सब प्रौढ़ वो कहा, उसके हाथ से रस्सी ले ली, रस्सी लेकर के उसको किनारे कर दिया, बच्चे को बचा दिया। ये कहते हैं कि इसको भूख लग गया, नहीं तो ऐसा नहीं, आज वो जानती थे, उसने कहा भूत नहीं नंद का भूख लग गया। ऐसे भी जिसका चित्त लग जाएगा, घर बार में नहीं लगेगा, अपने बाल बच्चे में नहीं लगेगा, सब उसके लिए रोएंगे और वो उसके लिए रोएगा। वृंदावन ऐसे ऐसे उसके लिए पंछियों का बसेरा है, रैन बसेरा है, अच्छे अच्छे राजकुमार के लड़के लड़कियां राजकुमारियां इस वृंदावन में अपने मन को कृष्ण को दे करके, इसलिए आदमी को कहा जी मनमना भव, तुम ऐसे अपने चित्त को हमारे में लगाओ जैसे ये गोपियां लगाते, और तुम सत्संग करना प्रभो, ये तो दुख का फल है। हाँ ये संभव मेरे लिए है कि मन को दे दूं, अभी तो मन आप कहेंगे भीष्म पितामह को बाण आ रहे हैं, देखो और उनसे लड़ो, द्रोणाचार्य से कर्ण से लड़ो, सबसे लड़ना है, इसलिए नहीं होगा, तब फिर क्या करो, मन मना भाव अब मेरा भक्त बन जाओ। तो इसलिए उसे एक निषेध था। ये हुआ द्वितीयतम, और इसके बाद बतलाएंगे सर्वपूज्यतम, और इसके बाद लाएंगे गुह्यतम। अब कल गुह्यतम के संबंध में एक उदाहरण के द्वारा एक एक जो बातें हैं धारण करके ऐसा आइए।
आज जो है ना वे वृंदावन को, आज जो है ना वे सुरा को, जो है ना वे हरि Thank you.